पाठ 10 ख्रीष्ट का पुनरुज्जीवन। चेले बहुत उदास के साथ संत दिन बिता रहे थे और यीशु इस दिन कब्र में आराम कर रहा था। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। जो दूत कब्र का पहरा दे रहे थे उन्हें मालूम हुआ कि उनका प्रिय कप्तान ईश्वर का बेटा था। कब्र से उठने का समय निकट आ रहा था। जब वे उसकी विजय की घड़ी का इंतजार बहुत उत्सुकता से कर रहे थे कि एक स्वर्गदूत बहुत तेजी से उड़ता हुआ स्वर्ग से आया। उसका चेहरा तो बिजली की चमक जैसी थी और वस्त्र तो बर्फ जैसा सफेद था। उसका प्रकाश से अंधकार रास्ता उजला हो गया। बुरे दूत वहां अपनी जीत की खुशी में यीशु की लोथ को अपने कब्जे में रखना चाहते थे। वे इस ज्योति को देखकर डर से भाग खड़े हुए। एक दूत जिसने यीशु को विनम्र होने की दशा में देखा था वहीं कब्र की देखभाल कर रहा था। और जब ये दूत आया तो दोनों कब्र के पास गए। जैसे ही वे कब्र के पास पहुंचे तो पृथ्वी कांप उठी और एक भयंकर भूकंप हुआ। मजबूत दूतों ने पत्थर को पकड़कर उसे किनारे लुढ़का दिया और उस पर बैठ गए। पहरेदार लोग बहुत डर गए। यीशु की लोथ की रक्षा करने आए थे पर बेहोश हो गए। अपनी ड्यूटी का ख्याल न कर वे स्वर्गदूत की तेज रोशनी को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। एक दूत ने बड़ा पत्थर को कब्र का दरवाजा से हटा दिया और चिल्लाकर कहा, हे ईश्वर का पुत्र, उठ, तुझे तेरा पिता बुला रहा है। मृत्यु अब उसे पकड़कर न रख सकी। यीशु जी उठ गया। दूसरा स्वर्गदूत कब्र के अंदर घुसकर बैठ गया जबकि यीशु जी उठकर वहां से निकल गया। इस दृश्य को स्वर्गदूत आश्चर्य से देख रहे थे। यीशु कब्र से निकलकर जा रहा था तो दूतों ने उसकी महिमा का गीत स्वागत के रूप में गाया। शैतान ने हार मान ली। स्वर्गदूत की ज्वाला से उसके बुरे दूत पहले ही डर से भाग चुके थे। वे अपने गुरु को शिकायत सुना रहे थे कि हमारा शिकार को जबरदस्ती छीन लिया गया। जिसे वे घृणा कर रहे थे वो अब जी उठ गया। शैतान और उसके बुरे दूत इस बात को लेकर कुछ क्षण खुशी मना रहे थे कि पापियों की जीवन ने उनका प्रिय प्रभु की जान ले ली थी। उसे कब्र का मुंह देखना पड़ा। पर उनका यह झूठा आनंद थोड़ी देर का था। यीशु पर उनकी विजय मरने तक ही थी। जी उठकर उसने सब पापियों के लिए मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। शैतान को कुछ देर के लिए उदास होना पड़ा। उसने एक आम सभा बुलाकर अपने दूतों को क्या करना होगा उसे बताया। वे ईश्वर के राज्य के विरुद्ध काम करने को तैयार हुए। शैतान ने उनको मुख्य पुरोहित और प्राचीनों के पास भेजा। शैतान के दूत आकर कहने लगे कि हमने उनको टराने में और उनका दिल को कठोर करने में सफलता पाई। उनके विश्वास को भी अंधा कर दिया ताकि वे यीशु के जी उठने पर विश्वास न करें। यदि वे जान जाएंगे कि यीशु जी उठा है तो लोग उन पर यह कहकर हमला करेंगे कि उन्होंने निर्दोष व्यक्ति को मार डाला है। जब स्वर्गदूत स्वर्ग चले गए तो रोमन सिपाही उठकर चारों ओर देखने लगे। ऐसा श्रीमती ईजी वाइट ने दर्शन में देखा। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि पत्थर हटा दिया गया है, यीशु वहां नहीं है। इस खबर को देने के लिए वे प्रधान याचक और प्राचीनों के पास वे दौड़ते दौड़ते गए। उसके हत्यारों ने यीशु के जी उठने की खबर सुनी तो उनके चेहरे पीले होकर मुरझा गए। वे डर कर कहने लगे कि यदि सिपाहियों की रिपोर्ट सही है तो हम तो मर गए। कुछ देर के लिए तो वे किमकर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी क्या करना और न करना है उसे भूल गए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि सिपाहियों को रुपए देकर इस बात को छिपाए रखने कहेंगे। उन्हें कहलवाएंगे कि हम लोग सो रहे थे उस वक्त उसके चेले चुराकर ले गए। ड्यूटी के समय सोने की बात कहने से तो उन्हें सजा मिलेगी। उस पर याजकों और प्राचीनों ने कहा कि हम रोमन गवर्नर को पैसे देकर बहका देंगे कि यीशु जी नहीं उठा पर उसके चेले चुराकर भाग गए। जब यीशु क्रूस में अपने प्राण दे दिए तो भूकंप हुआ। चट्टानें फटकर उड़ने लगीं और संतों की कब्रें खुल गईं। ठीक उसी तरह की घटना यीशु के जी उठने के समय हुई। ये चहेते संत महिमापूर्ण कब्रों से उठे। वे कुछ ही चुने हुए संत लोग हैं जो जी उठकर यीशु के साथ रहे। यीशु के जी उठने को छिपाने के लिए जब याजक और प्राचीन लोग कोशिश कर रहे थे तो ईश्वर ने एक दल को तैयार किया जो उसके जी उठने की गवाही दे। जिनको जिलाया गया था उनके विभिन्न डील डॉल थे। मुझे सूचित किया गया कि पृथ्वी के लोग अब अपनी शक्ति, आयु सीमा और डील डॉल में कम होते जा रहे हैं। शैतान इस पृथ्वी पर पाप को लाया और उसका प्रभाव से लोगों में बीमारियां आईं, अभिशाप आया और मृत्यु आई। जो लोग जिलाए गए थे उनकी तुलना में ये बौने और कमजोर थे। लूत और अब्राहम के दिनों में लोग बड़े डीलडॉल के होते थे और अधिक दिन भी जीते थे, पर इसके बाद लोग कमजोर और अल्पायु होते गए। शैतान लोगों को तंग कर कमजोर बनाते जा रहे हैं। जो लोग यीशु के साथ जी उठे वे दूसरे लोगों को भी दिखाई देकर गवाही देने लगे। यीशु का बलिदान सफल हुआ, वह मरकर भी जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठेंगे। वे ये गवाही देने लगे कि उसकी महान शक्ति अधिकार से ही कब्र से बुलाए गए। शैतान और उसके बुरे दूतों के द्वारा प्राचीन और पुरोहितों की झूठी रिपोर्ट के बावजूद भी यीशु का जी उठना नहीं छिपाया जा सका। ये लोग जो यीशु के साथ जी उठे थे उन्होंने गवाही दी तथा यीशु स्वयं लोगों को दिखाई देकर बताया था कि वही यीशु है जो पहले था, मर गया था पर फिर जी उठा। उसने चेलों को धीरज और ढाढ़स दिया। जब ये समाचार एक शहर से दूसरा शहर और हर जगह फैलता गया तो यहूदी लोग डरने लगे। बौर अपना पुराना घृणा की भावना को चेलों से छिपाने लगे। उनका सिर्फ एक ही मतलब था कि झूठी रिपोर्ट फैले और कुछ लोगों ने इसे विश्वास भी किया। यीशु के जी उठने का पक्का प्रमाण सुनकर पिलातुस भी डर गया, क्योंकि यीशु अपने साथ बहुत लोगों को जिलाया था। यीशु चेलों के बीच शांति छोड़ गया। जगत का यश को पाने के कारण अपना जीवन और अधिकार को बचाने के वास्ते उसने यीशु को क्रूसघात करने की अनुमति दी थी। उसको अब पूरा विश्वास हो गया कि वह यीशु एक साधारण और निर्दोष व्यक्ति ही नहीं वर ईश्वर का पुत्र भी था, जिसका खून का वह अपराधी था। पिलातुस का जीवन बहुत ही दुखमय बना। वह वेदना से भर गया और आनंद और आशा की किरण नहीं दिखाई देने लगी। अंत में वह कष्टदायक मृत्यु से मरा। हेरोद का मन और भी कठोर हो गया। उसने सुना कि यीशु जी उठा है, फिर भी उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। याकूब को कत्ल करवा दिया और पतरस को भी इसी इच्छा से पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया था। ईश्वर चाहता था कि पतरस जल्दी न मरे, उसे प्रभु का काम करना था, इसलिए दूत को भेजकर जेल से छुड़ा लिया। हेरोद पर ईश्वर की न्याय छड़ी तुरंत गिरी। जब वह भीड़ में भड़कीला वस्त्र पहनकर अपनी बड़ाई ईश्वर से बढ़कर करने लगा तो दूत ने उसके पेट में ऐसा मारा कि वह गिरकर बुरी हालत में मर गया। बड़े भोर को जब पवित्र महिलाएं यीशु की कब्र के पास सुगंध तेल से उसके शरीर को लगाने आईं, तो उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर हटाया हुआ है, यीशु का शरीर भी वहां नहीं था। वे डर कर सोचने लगीं कि दुश्मनों ने यीशु की लोथ को चुरा लिया है। उन्होंने दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए देखा। उनके आने की बात को समझकर दूतों ने कहा कि यीशु यहां नहीं है, वह जी उठकर गलील को चला गया। आओ कब्र को देख लो, जाकर चेलों को बता दो कि गलील चला गया है। महिलाएं डरकर घबरा गईं, वे तुरंत चेलों के पास दौड़कर गईं। वे तो यीशु की मृत्यु पर शोक कर रही थीं, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। जब औरतों से जी उठने की खबर सुनी तो वे भी दौड़कर कब्र के पास गए, पर सचमुच कब्र में यीशु नहीं था। गाड़ने के समय यीशु को जो मैलोन कपड़ा से लपेटा गया था वह तो मिला, पर यीशु नहीं। फिर भी चेले संदेह करने लगे कि वह कहां चला गया और कौन उठा ले गया। मरियम कब्र के आसपास ही घूम रही थी। वह चिंतित थी कि कैसे यीशु को देख पाएगी। कुछ भेद पाने की आशा से ही वह उसके आसपास थी। दूतों ने उसे बता दिया था पर उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। दूतों ने नम्रता से कहा, क्यों तुम रोकर विलाप कर रही हो, वह तो जी उठ चुका है, कहकर उन्होंने उसे शांति दी।
जब वो कब्र को छोड़कर जा रही थी कि यीशु उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसने भी उसके दुख करने का कारण पूछा और किसे खोज रही हो कहा। मेरी तो उसे एक माली समझ रखी थी। वो पूछने लगी, हे माली, कहां यीशु को कौन ले गया?
या तुमने कहां रखा है? इस पर यीशु को रहम आया। वो अपने स्वर्गीय आवाज में बोल उठा, मैं यीशु हूं। इस आवाज से वो पहचान गई। वो बहुत खुश होकर उसे आलिंगन करना चाही, पर यीशु ने कहा, अभी मुझे मत छूं, क्योंकि मैं अब तक स्वर्ग का पिता के पास नहीं गया हूं। यीशु ने कहा, जाकर चेलों को बता दो कि मैं स्वर्ग में पिता के पास जा रहा हूं। यीशु पिता के पास पहुंचकर उसके मुंह से उसके बलिदान और उद्धार कमाने का आशीर्वाद पाया और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार भी उसे दिया गया। श्रीमती वाइट दर्शन में देखी कि स्वर्गदूतों का झुंड यीशु को घेरते हुए स्वर्ग राज्य का नया यरूशलेम का फाटक तक स्वागत करने ले गए। वहां यीशु पिता और स्वर्गदूतों की महिमा के बीच प्रवेश कर पिता से आशीर्वाद लिया। महिमा से परिपूर्ण होने के बावजूद भी वो धरती के बेचारे चेलों को नहीं भूल सका। वो एक ही दिन के भीतर पृथ्वी पर लौट आया। पिता के पास जाकर अधिकार प्राप्त करने के बाद दूसरों के छूने से अब किसी को मना नहीं किया। इस समय में थॉमस गैरहाजिर था। चेलों के लाख विश्वास दिलाने पर भी वो जी उठा हुआ यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने कहा कि जब तक मैं अपनी उंगली से यीशु के छेदे हुए पंजर पर न छू लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर अपने भाइयों के ऊपर अविश्वास प्रकट करने लगा। यदि सब लोग ऐसा ही मांग करें तो बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलेगा। ईश्वर की इच्छा थी कि यह खबर बातों बातों में फैले। थॉमस जैसा संदेह करने वालों को ईश्वर पसंद नहीं करता है। जब यीशु दूसरी बार चेलों के बीच में आया तो थॉमस भी था। उसने उसे बुलाकर कहा, अपनी उंगली मेरे पंजर का छेद में डालकर देखो और विश्वास करो कि मैं यीशु हूं, क्योंकि दुश्मनों ने मेरे पंजर पर बचरछा से छेद किया था। थॉमस ने ऐसा ही किया और चिल्लाकर कहा, हे मेरे प्रभु और ईश्वर। यीशु ने डांटते हुए कहा कि तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वो जो सुनकर ही मुझ पर विश्वास करता है। मैंने देखा जिनकी अभिज्ञाता पहला और दूसरा दूतों के समाचार में है, उनके समाचार पर हमें विश्वास कर चलना चाहिए। यीशु का जी उठना को जैसा सुनकर विश्वास करते हैं, चेलों ने बताया कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु को छोड़कर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पाएं। हमें सच्चाई की सब बातों को मानना चाहिए। दूसरा और तीसरा दूतों के समाचार में किसी एक का नहीं मानते हैं तो हमारा उसमें कोई हिस्सा न होगा जिसको प्रभु ने तैयार किया है। मैं देख रही थी जब स्त्रियां यीशु के जी उठने के समाचार चारों ओर फैला रही थीं, तो शैतान भी प्रधानों और याजकों के द्वारा झूठी रिपोर्ट दिलवाने के लिए व्यस्त था। इधर ईश्वर भी मरे हुओं को जिलाकर यीशु के जी उठने की गवाही दिलवा रहा था। यीशु 40 दिनों तक चेलों के साथ रहा और स्वर्ग राज्य के भेदों को समझाता था, उनका विश्वास को मजबूत कर रहा था। उनको आदेश देकर कहा कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे विषय में सुना और देखा उसका साक्षी जगत के सब लोगों को दो, ताकि वे मुझ पर विश्वास कर जीवन पाएं। उन्हें विश्वास दिलाकर कहा कि मेरे कारण तुम लोग सताए जाओगे और दुख उठाओगे, परंतु जब तुम लोग मेरे वचनों को याद करोगे तो तुम्हें धीरज और शांति मिलेगी। उसने कहा कि मैंने शैतान की परीक्षा पर विजय पाई है, दुख तकलीफों से गुजरकर उसे हराया है, इसलिए मुझ पर उसका अधिकार नहीं है। पर जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके ऊपर भारी से भारी परीक्षा लाएगा। उसने आश्वासन दिया कि मेरी तरह विजयी होंगे जब मेरे वचन के अनुसार चलेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों को आश्चर्य कर्म करने का भी अधिकार दिया। दुष्ट लोग कभी कभी तुम्हारे शरीर पर काबू पाएंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे द्वारा इच्छित कामों की पूर्ति नहीं होती स्वर्गदूत आकर छुड़ा लेंगे। जब उनकी गवाही देने का काम खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि उनका जीवन ले लिया जा सकता है। उसके चेले बहुत उत्तेजित होकर तथा ध्यान से उसका उपदेश सुन रहे थे। इसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यही जगत का उद्धार करता है। उसकी सारी बातें चेलों के मन में घुस गईं, पर ये जानकर दुखित हुए कि उनका गुरु उन्हें छोड़कर स्वर्ग को जाने वाला है। यीशु ने फिर उन्हें शांति देकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, फिर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तब सदा तुम लोग मेरे साथ रहोगे। उसने फिर कहा कि मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वह आकर तुम्हें शांति देगा, सच्चाई को सिखाएगा और जिस रास्ते पर चलना होगा वहां तुम लोगों की अगुवाई करेगा। इन वचनों से शांति देकर यीशु ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आधारित वचन प्रकाशित वाक्य 14 आयत 6-8, 9-12, मत्ती 28, लूका 24, यूहन्ना 20 आयत 26-29।